जैसा आपको मालूम है, हम नेचुरल एनवायरनमेंट यानी प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में बातचीत करने वाले हैं। पर्यावरण का अर्थ है वह हर वस्तु जो हमारे आसपास हमें घेरे हुए है, हमारा घर, बगीचा, शहर, दुकान, पहाड़ियाँ, नदियाँ, सागर, हवा, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश आदि, और पौधे तथा जंतु, और हम भी धरती पर रहने वाली समस्त सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं हमारा प्राकृतिक वातावरण बनाती हैं, यानी नेचुरल एनवायरनमेंट। हम यह भी जानते हैं कि समस्त सजीव प्राणी जीवित रहने के लिए पर्यावरण पर निर्भर हैं। उनका जीवन पर्यावरण द्वारा नियमित होता है तथा बदले में ये पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। कहने का अर्थ कि हम एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। अतएव पर्यावरण अपने सभी घटकों के साथ एक जीवंत एवं जटिल सत्ता है। हमें कोई भी ऐसा कार्य जो पर्यावरण व इसके अंगों के बीच के नाजुक संतुलन को छेड़ने से पहले दो बार सोचना चाहिए। मगर हम ये कैसे जानें कि हमारे कार्यकलापों यानी एक्टिविटीज का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपने पर्यावरण की देखभाल करने के लिए हमें इसको घटकों एवं उनके संबंध को समझना आवश्यक है। निष्काम जी, क्या हमें आप बताएंगे ये घटक क्या होते हैं?
देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण हमारे सभी जो शिक्षार्थी हैं वो उससे अच्छी तरह से परिचित हैं, लेकिन आज हम इस विषय पे इसलिए बताना चाहते हैं कि एक बार हमें इस विषय के बारे में गंभीरता से सोचना होगा, जिससे कि हमारे शिक्षार्थी जो हैं इसको अध्ययन करें। देखिए, जैसे आपने पूछा कि इसके क्या घटक हैं, देखिए प्राकृतिक पर्यावरण जैसे आप उसका परिचय दे चुकी हैं, देखिए पूरा का जो हमारे आसपास जिस तरह का भी वातावरण है, जिसमें वायु, मिट्टी, जो भी इस तरह का वो है, ये सब मिलकर के जीव जंतु ये सब मिलकर इसके घटक बनाते हैं। और इसमें जैसे हमारे शिक्षार्थी हैं हमारे, वो पढ़ रहे होंगे इसके इनके घटकों के बारे में, जैसे अजैविक
जी,
अजैविक जैसे होते हैं, जैविक घटक होते हैं,
बायोटिक तथा एबायोटिक
जी,
मतलब आपका जी
जी जी। अजैविक में जैसे बहुत सारी इस तरह की चीजें आती जो हमारे प्राणी हैं, मतलब ये है, मतलब पेड़ पौधे वगैरह हैं, ये सब हमारे ये सब होते हैं। इसी तरीके से जैविक में जो होता है कि मतलब स्वपोषी, जैसे हमारे शिक्षार्थी पढ़ रहे होंगे, परपोषी और मृतपोषी, यानी कि अगर हिंदी में इनको बोलते हैं तो ऑटोट्रॉफ, हिटोट्रॉफ एंड सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे जो शिक्षार्थी जो पढ़ रहे होंगे वो इस समय परितंत्र जो हमारा पूरा का पूरा है उसके बारे में पढ़ रहे होंगे, इन सब से मिलकर के हमारा ये
जी। आपने अच्छी जानकारी दी निष्काम जी
जी।
परितंत्र तरह इसके घटक के बारे में हम थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं
जी।
सजीव प्राणी जीवित रहने के लिए अपना पोषण तथा ऑक्सीजन पर्यावरण से प्राप्त करते हैं। इस क्रिया में पौधे तथा जीव जंतु आपस में एवं भौतिक पर्यावरण से क्रिया करते हैं। इस प्रकार परितंत्र की परिभाषा दी जा सकती है कि यह एक ऐसा पर्यावरण है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष के समस्त जीव तथा पर्यावरण, निर्जीव भौतिक कारक जिनके साथ ये जीव क्रिया करते हैं आते हैं। 1935 में टेंसले ने परितंत्र के तथ्य को प्रस्तुत किया। परितंत्र शब्द ग्रीक भाषा के ओइकोस अर्थात घर तथा सिस्टम अर्थात तंत्र शब्दों से मिलकर बना है। परितंत्र प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित हो सकता है, ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है। प्रकृति में विद्यमान समस्त परितंत्र प्राकृतिक परितंत्र हैं। ये जलीय या स्थलीय हो सकते हैं। वन व मरुस्थल स्थलीय परितंत्र हैं, जबकि नदियां, तालाब तथा सागर जलीय परितंत्र हैं। दूसरी ओर मानव निर्मित परितंत्र हैं, जैसे बगीचे, एक्वेरियम, खेत आदि, तो ये भी सब परितंत्र के अंदर आ जाते हैं। जैसा आपने बताया, सजीव तथा निर्जीव दोनों मिलकर परितंत्र बनाते हैं
जी।
इसी आधार पर उन्हें जैविक या अजैविक यानी बायोटिक तथा एबायोटिक कारक कहा जा सकता है। अजैविक कारक किसी परितंत्र के पर्यावरण में निर्जीव भौतिक व रासायनिक कारक होते हैं, जबकि जैविक किसी परितंत्र में जैविक घटकों के अंतर्गत पौधे, जंतु तथा सूक्ष्म जीवी आ जाते हैं। अब हमें बताना होगा कि अजैविक कारक कौन कौन से हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, टेम्परेचर यानी तापमान, वर्षा यानी रेनफॉल, नमी यानी आर्द्रता या मॉइस्चर, मिट्टी यानी सॉइल और वायु आदि। और जैविक कारक में आ जाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी, अपरतहारी, यानी तरह तरह के जीव जंतु। ये सभी कारक स्थान व समय के अनुसार भिन्न होते हैं। आप देख सकते हैं कि तटीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों तथा रेगिस्तान के पौधे एक दूसरे से डेफिनेटली अलग अलग होते हैं। हम जानते हैं ऐसा इसलिए होता है कि प्रत्येक के अजैविक कारक जैसे तापमान, मिट्टी व नमी अलग अलग होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अजैविक कारक किसी पारितंत्र के जीवों को प्रभावित करते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि सारे कारक किसी न किसी भांति समस्त जीव जंतुओं को प्रभावित करेंगे किसी भी पारितंत्र में। पर्यावरणीय कारक, जैविक तथा अजैविक कारक सभी पारितंत्रों में महत्वपूर्ण है। किस प्रकार समस्त जीवधारी पर्यावरण के अजैविक कारकों पर निर्भर करते हैं। हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की सहायता से स्वयं बनाते हैं। यदि ये क्रिया न होती तो हम में से किसी को भी भोजन न मिलता, यानी वहीं से शुरू होता है भोजन का बनना। और इसका अर्थ ये भी हुआ कि जो सूर्य की एनर्जी है उसको हमने फूड के रूप में कन्वर्ट कर लिया पेड़ों द्वारा। मांसाहारी तथा मनुष्य सहित मांसाहारी जीव अपने भोजन के लिए पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करते हैं। पौधे, जंतु तथा अन्य जीव पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल तथा अन्य पोषक पदार्थ पर्यावरण में छोड़ते हैं। ये न केवल मिट्टी को पोषक पदार्थों से संपन्न करते हैं बल्कि वातावरण को भी पुनर्जीवित करते हैं। जैसे कि हमने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, पेड़ों ने कार्बन डाइऑक्साइड ली और ऑक्सीजन छोड़ी, इस प्रकार हमारा ये काम चलता रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम प्रतिदिन सूर्य के प्रकाश का एक अंश खाते हैं
जी।
अब निष्काम जी, आप ये बताइए जी, पूछिए
जी, जी, जी। जैसा आपने बता रहे थे कि प्राकृतिक पर्यावरण के जो उनके घटकों के बारे में आप बता रही थी, तो बड़ा अगर जैसे आपने बताया अजैविक और जैविक कारक होते हैं। देखिए, देखा जाए तो अजैविक जो कारक है वही पूरी तरीके से पर्यावरण को आकार देता है और इसके अभाव में जैविक तो आप उम्मीद भी मत कीजिए, मतलब इस तरह का, मतलब ये हम समझ सकते हैं। अच्छा, जैसे हमारे बच्चे, हमारे जो शिक्षार्थी हैं वो इस अपने सब्जेक्ट, इस समय जो सब्जेक्ट है उनका जो लेसन है प्राकृतिक पर्यावरण पे, तो खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब तो आप इस पर थोड़ी रोशनी देना।
ये खाद्य श्रृंखला
जी
सूर्य से शुरू होती है
जी,
पेड़ों पे आती है, पेड़ खाना बनाते हैं क्लोरोफिल से, फोटोसिंथेसिस से
जी।
अब उस पेड़ को खाने वाले तो हम शाकाहारी कहलाए जाएंगे
जी, जी।
और जो शाकाहारी वो खाएंगे वो मांसाहारी, जैसे कि घास
जी।
अब घास ने तो खाना खुद बना लिया, घास को खाया खरगोश ने
जी।
अब खरगोश जो है वो शाकाहारी माना जाएगा
जी, जी।
और खरगोश को अगर खा लिया, मान लीजिए भेड़िए ने
जी।
तो अभी भेड़िया जो है वो मांसाहारी है, लेकिन वही एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होती जाएगी
जी, जी।
जैविक समुदाय के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी अपने लर्नर्स को
जी, जी।
जैविक समुदाय का तात्पर्य है कि एक ही वास स्थल में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों का समुदाय जो वहां रहता है उसको हम जैविक समुदाय कहते हैं। एक पारितंत्र में एक दूसरे से परस्पर संबंधित अनेक जैविक समुदाय रहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम एक वृक्ष पर अनेक प्रकार के पक्षियों, कीटों व अन्य कई जंतुओं की समस्याओं को देख सकते हैं जो पारस्परिक निर्भरता के साथ मिलजुल कर एक समान ही पर्यावरण में रहते हैं। हमारे लर्नर्स देख सकते हैं कि एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाए तो वो कुछ चिड़ियों को देखेंगे घोंसला बनाते हुए, वो गिलहरी को घूमते हुआ देखेंगे, बटरफ्लाई को देखेंगे, हो सकता है कुछ और इंसेक्ट्स दिखाई पड़ जाए, वास दिख जाए, हनी भी दिख जाए, तो ये सारे उसी एक पेड़ के आसपास घूम रहे हैं, यानी वो उनका एक पारितंत्र बना हुआ है। पोषण के प्रकार के आधार पर इसी जैविक समुदाय के सदस्यों को स्वपोषी, परपोषी तथा मृतपोषी में बांटा गया है, जैसा कि आपने भी बताया था
जी, जी।
स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स, आप सब जानते हैं बच्चों कि सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु क्या हम ऐसा कर सकते? नहीं, इसका मतलब हम वृक्षों और पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, खाने के लिए भी और भी चीजों के लिए। कुछ जीव सूर्य के प्रकाश को उपयोग नहीं करते हुए भी रासायनिक संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं। इस श्रेणी में कुछ बैक्टीरिया आते हैं। पौधे समस्त जंतुओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्रदान करते हैं। लर्नर्स, डियर लर्नर्स, आप ये तो समझ ही रहे हैं कि हम किसी न किसी तरह से पौधों पर डिपेंड कर रहे हैं, चाहे हम हर्बीवोर हो या कार्निवोर हो, यानी चाहे हम वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। इसलिए हम उनको उत्पादक भी कह सकते हैं, क्योंकि वो फूड का उत्पादन कर रहे हैं। स्वपोषी किसी भी जैविक तंत्र का आधार है, क्योंकि ये सूर्य की ऊर्जा को प्राप्त कर सबके लिए भोजन बनाते हैं। स्थलीय पारितंत्रों में स्वपोषी मुख्यतः जड़ वाले पौधे होते हैं, जबकि जलीय पारितंत्र में तैरने वाले, जिनको फाइटोप्लैंक्टन कह सकते हैं, या छिछले पानी में जड़ वाले पौधे, जिसको हम मैक्रोफाइट्स कह सकते हैं, इसके अच्छे उदाहरण हैं। अब आए परपोषी यानी हिटरोट्रॉफ्स। परपोषी जीवों को उपभोक्ता कहते हैं, क्योंकि वो बने बनाए खाने को खा रहे हैं जो पौधों पर व अन्य जंतुओं को खाते हैं। उपभोक्ताओं के शाकाहारी तथा मांसाहारी शामिल किए जा सकते हैं। अब आते हैं मृतपोषी यानी सेप्रोफाइट। इन्हें अपघटनकर्ता भी कह सकते हैं, अपघटक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। बड़ा अजीब लगता है सुनकर कि ये सड़ी गली चीजें खाते हैं, लेकिन बड़े बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। क्यों
जी, जी।
अगर ये ना होते तो जो चीज सड़ती वो सड़ी पड़ी रहती।
बिल्कुल सही।
और कितने कितना इन्फेक्शन हमारी धरती पे हो जाता। तो सड़ी गली चीजें खाके हमको ये उन खराब चीजों से छुट्टी दिलाते हैं। ये जटिल कार्बनिक यौगिकों का विघटन कर उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अंततः ये यहाँ उन्हें उनके प्राकृतिक पर्यावरण में वापस कर देते हैं, क्योंकि साइक्लिंग तो हर एक चीज की होती है।
बिल्कुल बिल्कुल।
अब घटक पारितंत्र के जैविक तथा अजैविक घटक का उस पारितंत्र में एक महत्वपूर्ण संबंध दर्शाते हैं। कुछ फफूंद एवं बैक्टीरिया इसी श्रेणी में आते हैं। जैविक तथा अजैविक घटकों एवं उनके बीच संबंध की संकल्पना को समझने के लिए तालाब एक पारितंत्र का अच्छा उदाहरण है। तालाब की तीन अलग सतहें होती हैं, यानी स्ट्रेटा, ऊपरी, मध्य एवं निचली। तीनों सतहों में एक दूसरे से तापमान, प्रकाश की स्थिति, ऑक्सीजन की मात्रा तथा इसमें रहने वाले जैविक घटकों को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के आधार पर काफी अंतर होता है। यदि आपने कभी तालाब में डुबकी लगाई होगी तो आपने जरूर देखा होगा कि वहाँ कुछ जीव जंतु हैं, कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। उसमें एक खाद्य श्रृंखला भी नजर आ सकती है। अधिकांश जीव एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं के भाग होते हैं। एक खाद्य श्रृंखला आसानी से जो बताई जा सकती है, जैसे सूक्ष्म जीव है, उसको केंचुए ने खा लिया, केंचुए को मेढक ने खा लिया, मेढक को सांप ने खा लिया, सांप को मोर ने खा लिया। ये तो ही एक सिंपल खाद्य श्रृंखला, लेकिन हो सकता है कि एक ही जीव कई खाद्य श्रृंखलाओं में आ जाए।
अच्छा।
तब हम इसे खाद्य जाल कहेंगे। वस्तुतः होता यही है कि एक चीज कई लोगों द्वारा खाई जाती है
जी।
तो वो एक ही जीव कई खाद्य श्रृंखलाओं में आ जाए। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का महत्व क्या है? यह पारितंत्रीय संतुलन बनाए रखने में सहायक है। आप सोचिए, सांप को मोर खाता है और सांप चूहे को खा लेता है। अब अगर हम सांप को बीच में से हटा दें तो एक तरफ चूहे बढ़ जाएंगे
जी, बिल्कुल, बिल्कुल,
और दूसरी तरफ मोर मर जाएंगे क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिलेगा। तो यानी एक तरह के एनिमल्स के साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी
जी।
यह पारितंत्रीय संतुलन बनाए रखने में सहायक है, जैसे
बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप इसको। और अगर ऐसा ना हो तो बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी,
समस्या और वो चलेगी नहीं, फूड चेन आगे नहीं बढ़ेगी,
फूड चेन आगे नहीं बढ़ेगी।
ये विभिन्न जीवों के बीच खाने के संबंधों को समझने में सहायक है, ये कौन किसको खा रहा है
जी।
इसके माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह एवं पोषक द्रव्यों का चक्रण भी, साइकिल भी होता है।
आप बहुत महत्वपूर्ण रोशनी डाल रहे हैं पूरे विषय पर। और साथ ही साथ जैसे इसमें आपने अभी, जैसे हमारे विद्यार्थी जो हैं वो परितंत्र में चल रही जो ऊर्जाएं हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे इसमें
जी। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव बता दूं मैं, जैसे कि आपने अभी प्रश्न उठाया है
जी। जी,
हम जानते हैं कि भोजन ऊर्जा प्रदान करता है
जी,
और इसलिए एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा एक कड़ी यानी स्तर से दूसरी कड़ी यानी दूसरे स्तर में स्थानांतरित होती है। जैसे चूहे को सांप ने खाया तो ऊर्जा चूहे से सांप पे चली गई।
जी ऊर्जा बिल्कुल ठीक है आपने। हाँ,
ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में होता है
जी,
स्थानांतरित ऊर्जा वापस नहीं आती। जब एक शाक भक्षी खाता है तो ऊर्जा का केवल एक अंश जो वह पौधों द्वारा प्राप्त करता है नया जैव संहति बन जाता है, शेष ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बदल जाती है या शाक भक्षी द्वारा अपनी जैव प्रक्रियाओं को चलाने के लिए जैसे गति पोषण श्वसन जनन काम आ जाती है। या बच्चों ऐसे समझ लो, आपने मान लीजिए एक खीरा या मूली खाई तो इसकी जो एनर्जी है वो आपने यूज की चलने फिरने में या बोलने में तो कन्वर्ट हो गई आपकी एनर्जी में। इससे जब कोई शाक भक्षी एक मांस भक्षी के द्वारा खाया जाता है तब कुल ऊर्जा का केवल एक छोटा सा भाग ही मांस भक्षी द्वारा प्राप्त किया जाता है। शाक भक्षी से मांस भक्षी तक ऊर्जा के स्थानांतरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा की हानि होती है। इससे बच्चों ये समझ लेना चाहिए कि जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर जाती है तो उसकी क्वांटिटी में कमी आ जाती है। दूसरे शब्दों में अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपने शाकाहारी भोजन किया तो इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज आपको ज्यादा एनर्जी मिली, और अगर आपने मांसाहारी भोजन किया तो इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज आपको कम एनर्जी मिली।
अच्छा, अच्छा।
क्योंकि अब वो आगे बढ़ते जा रहे हैं ना कि जो मुर्गी है उसने दाना खाया, आपने मुर्गी खाई।
जी बिल्कुल बिल्कुल।
तो 10% ऊर्जा जो है वो कम होती जाती है हर एक लेवल पर। इसलिए मांस भक्षी को विकास के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अनेक शाक भक्षियों को खाना पड़ता है, क्योंकि हर स्तर पर ऊर्जा की बड़ी मात्रा में हानि हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा जो शाक भक्षी होते हैं यानी हर्बीवोर होते हैं उनका आकार थोड़ा बड़ा होता है, जैसे गाय है, हाथी है,
जी बिल्कुल भैंस है, बिल्कुल।
और जो मांस भक्षी है उनका आकार छोटा होता है, जैसे कि शेर है, चीता है, बिल्ली है। इसलिए जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते हैं स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा घटती चली जाती है। तो ये तो हमने बच्चों को ये बताने की कोशिश की है कि कैसे ऊर्जा एक डायरेक्शन में उसका प्रभाव होता है, उल्टे डायरेक्शन में नहीं, और दूसरा हर एक स्तर पर वो थोड़ी थोड़ी यानी करीब 10% कम होती चली जाती है। अब हम थोड़ा नाइट्रोजन चक्र के बारे में बात कर लें।
जी
नाइट्रोजन चक्र बहुत आवश्यक है। निष्काम साहब आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहिए।
देखिए आपने बिल्कुल जो अभी आपने जो खाद्य श्रृंखला और इन पर जो रोशनी डाली है वो हमारे शिक्षार्थियों को बड़ा उससे लाभान्वित होंगे। और जो नाइट्रोजन चक्र के बारे में जो आपने बताया ये भी परितंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब इसमें आप नाइट्रोजन चक्र जो है इसमें हमारे शिक्षार्थी जो पढ़ रहे होंगे नाइट्रो स्थिरीकरण के बारे में पढ़ रहे होंगे, नाइट्रो स्वांगीकरण के बारे में, अमोनीकरण के बारे में पढ़ रहे होंगे। जी
तो इससे बात जो निकलती है वो ये है कि जैव भू रासायनिक या पोषक चक्र चल रहे हैं इस धरती पर, जिसको हम बायो जियोकेमिकल साइकिल्स कह सकते हैं।
जी जी
नाइट्रोजन साइकिल उसी का एक हिस्सा है। जैसे समुदाय को जीवित रखने के लिए पोषक तत्वों की सतत आवश्यकता होती है, जैसे वह पर्यावरण से पूर्ण करते हैं, ये पोषक पदार्थ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर या जल के रूप में वातावरण में विद्यमान होते हैं। यद्यपि एक समय घर किसी पारितंत्र के अलग भागों में इसकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है, लेकिन ये तत्व कभी समाप्त नहीं होते और प्रकृति अपने तरीके से चक्रण द्वारा उन्हें पुनः प्राप्त कर लेती है। यदि ऐसा ना होता तो एक बार ऑक्सीजन खत्म हो गई तो हो गई।
जी
इन तथ्यों का पर्यावरण में गोलाकार रूप में घूमना जैव भू रासायनिक चक्रों को जन्म देता है। जैव भू रासायनिक चक्र वह चक्र है जिसमें एक क्षेत्र के नाइट्रोजन, कार्बन तथा धरती व वायुमंडल के अन्य अकार्बनिक तत्व पौधों तथा जंतुओं के कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाती है और पर्यावरण में पुनः वापस आ जाते हैं। यह एक वृत्ताकार पथ है जिसमें कोई रसायन या अणु पर्यावरण में प्रभावित होते हैं। यह ऊर्जा प्रवाह की तरह एक दिशीय नहीं होता है। सबसे पहले हम कार्बन चक्र की बात करते हैं।
जी
कार्बन चक्र वह जैव भू रासायनिक चक्र है जिसमें धरती पर कार्बन, मृदा, जल तथा वायुमंडल में विनियमित होता है। यह धरती पर सबसे महत्वपूर्ण चक्र है और इसके माध्यम से कार्बन का सभी जीवों के द्वारा पुनर्चक्रण होता है। यह इस कथन को सत्यापित करता है कि वृत्त में जो जाता है वही लौट कर आता है, यानी अगर साइकिलिंग होगी तो जहाँ से शुरू हुई वहीं पर खत्म होगी, तो वो चीज दोबारा से हमको मिलेगी। अब हम नाइट्रोजन चक्र की भी बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन चक्र वह जैव भू रासायनिक चक्र है जो प्रकृति में नाइट्रोजन एवं नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के रूपांतरण को बताता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत है। हरे पौधे नाइट्रोजन को नाइट्राइट व नाइट्रेट के रूप में मृदा व जल से प्रशोषित करते हैं। जंतु जब पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तब वह नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। जीवधारियों में नाइट्रोजन प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्लों का आवश्यक घटक होता है। नाइट्रोजन चक्र को 5 चरणों में समझा जा सकता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो आप अभी बता रहे थे निष्काम साहब, नाइट्रोजन 2 तरह से स्थिरीकृत हो सकता है। बादल बनते समय बिजली का चमकना, जब वायुमंडल में बिजली चमकती है तब नाइट्रोजन व ऑक्सीजन आपस में जुड़कर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। यह ऑक्साइड वर्षा के जल में घुल जाते हैं और धरती की सतह पर पहुंचकर मृदा तथा जल का एक अंश बन जाता है। उस तरह से मृदा में रहने वाले मुक्त सूक्ष्म जीवी एवं फलीदार पौधे जैसे मटर इत्यादि या कोई भी दाल के पौधे, उनकी जड़ों की गांठों में रहने वाले सहजीवी बैक्टीरिया द्वारा नीले हरे शैवाल तथा बैक्टीरियो जैसे सूक्ष्म जीवी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्राइट व नाइट्रेट के रूप में स्थिरीकृत कर देते हैं। फिर ये नाइट्रोजनी यौगिक मृदा में छोड़ दिए जाते हैं। नाइट्रोजन स्वांगीकरण, पौधे अमीनो अम्ल बनाने के लिए नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं। जंतु इस नाइट्रोजन को खाद्य श्रृंखला के माध्यम से प्रोटीन के रूप में ग्रहण करते हैं। अमोनीकरण भी एक स्थिति है। प्राणियों के शरीर के भीतर प्रोटीनों का उनके सरलतम रूप यूरिया व अमोनिया में विघटन होता है। यह मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। मृत जीवों के अवशेष भी अमोनिया के यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह अमोनिया के यौगिक अमोनिकारी बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी को तो हाँ अमोनीकरण कहते हैं। इसी तरह है नाइट्रीकरण। अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन नाइट्रीकरण कहलाता है। मृदा में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोबैक्टर व नाइट्रोसोमोनास अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। इनमें से कुछ नाइट्राइट व नाइट्रेट पौधे पुनः पोषण के लिए ले लेते हैं। नाइट्रीकारी बैक्टीरिया अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन की करते हैं। विनाइट्रीकरण सुडोमोनास एवं अस्ट्राडीरियम जैसे बैक्टीरिया मृदा में उपस्थित नाइट्राइटों व नाइट्रेटों को नाइट्रोजन में बदल देते हैं जो वापस वायुमंडल में पहुंच जाती है। तो ये तो हुआ हमारा नाइट्रोजन चक्र जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जल चक्र के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए जल चक्र के बारे में जैसे आपने अभी इतने जो हमारे परितंत्र में जो जिस तरह के ऊर्जा प्रवाह चलते रहते हैं आपने उनके बारे में बताया, और इसी तरह से आपने कार्बन चक्र के और नाइट्रोजन चक्र को आपने विस्तार से बताया, और हमारे शिक्षार्थी इन सब चीजों को से रूबरू हो रहे होंगे, और क्योंकि NIS का जो पाठ्यक्रम है वो इतना विस्तृत है, इतना शानदार किस्म से है कि वो निश्चित ही उनको इस तरह का ज्ञान अच्छा बढ़ता है। जल चक्र के बारे में जैसा आपने,
ये बहुत छोटा सा चक्र है
जी।
हम सभी जानते हैं कि जल सभी जीवधारियों के लिए अति आवश्यक है
जी,
परंतु धरती पर जल सीमित मात्रा में है, ये हमको समझ लेना चाहिए
जी।
जल एक चक्राकार ढंग में किसी पायतंत्र के एक घटक से दूसरे घटक में जाता है और इसे हम जल चक्र कहते हैं। जैसा कि बच्चों आपको मालूम है कि समुद्र की सतह से पानी उड़ता है और वो ऊपर जाके बादल बनाता है स्टीम में, और बादल जब बरसते हैं तो पानी नीचे धरती पे आता है जो अच्छा सॉफ्ट वाटर होता है और नदियों में आता है और नदियां फिर समुद्र में एंड होती हैं। तो ये हमारा सिंपल सा जल चक्र है, लेकिन जल को हमें बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है क्योंकि इसका चक्रण तो हमें सिंपल दिखता है लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी इतनी आसान नहीं है।
नहीं, अगर आप यहाँ जल चक्र की बात हो रही है, इवन जल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं
जी,
इस समय मैं अपने शिक्षार्थियों को ये बताना भी इस समय बड़ा हमारा ऐसे माहौल से हम गुजर रहे हैं जहां जल की असीमितता जो है वो एक जिसे दूसरे रूप में देख रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? जैसे
बहुत कमी है पानी की, जी जी, पानी के लिए लोग परेशान हैं, तो क्यों परेशान हैं?
जी,
क्योंकि शायद हमने पानी वेस्ट किया है।
जी नहीं, यहाँ तो आप हम बिल्कुल जैसे हमारे एनआईएस के स्टूडेंट्स वगैरह देख रहे हैं, एक इसमें आप क्या कहेंगे? जैसे अभी क्योंकि मैं इस घटना का जिक्र करना ज्यादा उचित समझूंगा इस समय, क्योंकि हम जल पे बात कर रहे हैं, तो आप ये बताए क्या आप क्या अभी आज आजकल जो उत्तराखंड में हो रहा है, जो पर्यावरणीय आपदा आ रखी है, पर्यावरणीय समस्याएं आ रखी, इस पे आपको आप कैसे मतलब इसको किस नजर से देखते हैं? इसमें आदमी कहाँ तक दोषी है और कहाँ तक पर्यावरणीय समस्या? ये
इसका जवाब तो एक ही शब्द में है, वाटर हार्वेस्टिंग।
जी जी,
हमको वाटर हार्वेस्टिंग का के तरीके पहले से ही अपना लेना चाहिए कि जब पानी हमारे पास ज्यादा पहुंच जाए नेचुरल वे में, तो हम उसका हार्वेस्टिंग कर सके।
जी जी,
जब पानी भर भर के नदियों में उफान आ रहा है, बाढ़ आ रही है, शहर के शहर डूबे जा रहे हैं, तब तो हम वाटर हार्वेस्टिंग शुरू नहीं कर सकते ना।
जी जी जी,
तो वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत सिंपल मैकेनिज्म है जिसका सिस्टम हर एक शहर में पहले से बना होना चाहिए कि जो भी पानी एक्स्ट्रा होगा वो इस रास्ते कहाँ पे इकट्ठा कर लिया जाएगा, तो ना बाढ़ आएगी और ना पानी की कमी आएगी। अब पारितंत्रीय सेवाओं या सुविधाओं के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं।
बिल्कुल,
क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे लिए पारितंत्र कितने मूल्यवान है? हमने अपने प्राकृतिक पारितंत्रों के कुछ साधनों से मुफ्त में कितने लाभ उठाते हैं? जैसे हम पर्यावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वन नदियों व सागर जलवायु को नियंत्रित करते हैं, विभिन्न कीटाणुओं परजीवियों व शिकारी प्राणियों पर भी प्राकृतिक नियंत्रण के द्वारा अनेक रोगों को नियंत्रण में रखा जा सकता है। हम ये भी जानते हैं कि जल व भोजन के बिना हम नहीं रह सकते।
जी,
हम इन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे व शैवाल सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित कर सभी प्राणियों के लिए भोजन बनाते हैं। जल, खनिज, जैव संहति यानी बायोमास, लकड़ी यानी ईंधन व घर बनाने के लिए भी लकड़ी चाहिए।
लकड़ी चाहिए,
सब हमारी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं पर्यावरण द्वारा ही हमें प्राप्त होती हैं। यदि भी हमारा पर्यावरण हमें अनेक मूल्यवान साधन मुफ्त में उपलब्ध कराता है, तथापि आज समय की आवश्यकता है कि हम इसका मूल्य पहचाने और सेवाओं संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करें, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ तो छोड़ जाएं कि सभी कुछ इस्तेमाल करके बर्बाद कर दें।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमारे को जो पर्यावरणीय जो वरदान मिले हुए हैं, इनको हमें बड़ा संचित और इस तरह से प्रयोग करना पड़ेगा जिससे भविष्य में भी हम इनका उपयोग कर सकें और हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी इसका फायदा उठा सके। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और
अब हम प्राणियों के अनुकूलन की बात करेंगे थोड़ी देर बाद।
जी जी जी,
अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्राणियों में अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। हम पैरों से चलते हैं, हमें मालूम है, पक्षी पंखों से उड़ते हैं, जो व्हेल है वो फ्लिपर से तैरती है, सभी के पाद होते हैं यानी चलने के लिए कोई सुविधा। अब हम ये कहेंगे कि हम जमीन पर चलते हैं और पक्षी जो चिड़िया है वो हवा में उड़ती है और जो व्हेल है वो पानी में चलती है, तैरती है। पाद उस पर्यावरण के अनुसार होते हैं जिसमें कोई प्राणी वास करता है। अनुकूलन वे विशिष्ट लक्षण हैं जो किसी पौधे या जंतु को एक स्थान विशेष या आवास में रहने में सहायक
होते हैं। बिल्कुल,
क्या आप बता सकते हैं कि मेंढक किस प्रकार धरती यानी थल पर कूदने व जल में तैरने के लिए अनुकूलित है? कूदने के पाद तथा तैरने में पश्चपाद पीछे वाले पाद की उंगलियों के नीचे त्वचा जाल सहायक होता है, यानी पीछे के पैरों में तो त्वचा का जाल है उसे तैरेगा और आगे के पैरों में नहीं उसे कूदेगा जमीन पर। तो जीव प्राणी स्वयं को अनुकूलित करते हैं, जैसे कि सफलता पूर्वक भोजन की खोज कर सकें, अन्य प्राणियों के आक्रमण से स्वयं की रक्षा कर सकें, जनन के लिए अनुकूल परिस्थितियां तलाश सकें, पर्यावरण में होने वाली परिवर्तन के प्रति कुशलता पूर्वक व्यवहार कर सके। पौधों में जलीय अनुकूलन होता है अगर वो जल वाले पौधे हैं। पौधों को हम हाइड्रोफाइट, जो जल में रहने वाले पौधे हैं उनको हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। अल्प विकसित मूल तंत्र होगा उसमें, क्योंकि जल सरलता से उपलब्ध है, लंबी लंबी जड़ों की कोई जरूरत ही नहीं है। जल पर उतरती पत्तियों में स्टोमेटा केवल ऊपरी हिस्सों पे होंगे, क्योंकि निचली हिस्सी तो जल में डूबी हुई है,
डूबे हुए
तो उसमें जरूरत नहीं है, वहाँ पे सोमेटा की कोई जरूरत नहीं है। पत्तियाँ पतली एवं सकरी होती हैं, उदाहरण के लिए हाइड्रोला या जिसमें लंबी चपटी रिबन जैसी होती है पत्तियाँ, और वेसनेरिया यह अनुकूलन पादप शरीर को जल धाराओं से होने वाली किसी भी हानि से बचा लेता है। तना लंबा होता है, पतला व स्पंजी होता है जैसे कमल, जिससे कि वह जल धारा के साथ साथ बहता रहे। सतही पौधों पर चपटी पत्तियां तैरने के लिए होती हैं। उनकी चौड़ी ऊपरी सतह पर मोम की तरह परत होती है, जिससे जल पत्ती से चिपका नहीं रहे
जी।
जैसे कमल
या कमल का पौधा होता है, बिल्कुल
उसे पानी रुकता नहीं
जी जी।
अगर पानी रुक
जाए तो बहुत सुंदर लगता है वो देखने में,
वो दृश्य भी अच्छा होता है, और अगर पानी रुक जाए तो फिर पत्ता सड़ जाएगा
जी,
इसलिए नहीं रुकता। इसी प्रकार प्राणियों में भी, जो जल में रहने वाले प्राणी हैं, उनमें भी अनुकूलन होता है। जैसे कि जो लक्षण पाए जाते हुए हैं, शरीर धारा रेगित, दोनों सुनों पर नुकीला होता है, ये घर्षण कम करता है जब जंतु जल में गति करते हैं, जैसे मछली में आप देख सकते हैं। चिकना व रोम रहित शरीर जलीय तंतुओं को बहुत कम घर्षण के साथ जल में गति करने के लिए सहायक होता है। बत्तख में जाल वाले पाद होते हैं जिससे कि वो तैर सकती है।
इवन मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा शिक्षार्थियों को, आप बतख के बारे में आप बोलिए, मैं बतख आपने भी देखा होगा कि बतख को कुदरत ने कुछ ऐसी आपातकालीन वो भी दी हुई सुविधाएं, जिससे कि वो आवश्यकता पड़ने पर अगर उसे लगता है किसी प्रकार से उसकी जान को या उसके सर्वाइवल में खतरा आ रहा है तो वो कुछ समय के लिए वो उड़ भी सकता है,
उड़ भी सकती है, थोड़ी थोड़ी उड़ान भर सकती है
जी जी बिल्कुल।
और चपटी पूंछ पतवार का कार्य करती है। मछलियों के पंख तैरने, दिशा चालन तथा संतुलन बनाए रखने में सहायक करते हैं। व्हेल में तैरने के लिए फ्लैपर होते हैं। सारस में लंबी टांगे व गर्दन शिकारी चिड़ियों के शरीर को पानी से बाहर रखती है
जी।
लंबी गर्दन चिड़ियों को जल तक या इसके भी नीचे भोजन ढूंढने में भी सहायता करती है। ये सारे एडेप्टेशन है जिसमें कि पक्षी या जो भी कोई जीव जंतु है वो चल भी सके और भोजन भी प्राप्त कर सके। व्हेल के फ्लिपर शरीर की पेशियों व त्वचा के बीच जमी वसा या तेल ताप अवरोधक का कार्य भी करते हैं। आंखें सिर के ऊपर होती हैं, जिससे जंतु जल में छिपकर भी अपने शिकार को देख सकता है व शिकारी से बच सकता है। जल के भीतर तैरने वाले जंतुओं की आंखों की पलके पारदर्शी होती है। मेम्ब्रेन सिर के ऊपर स्थित नाफ छिद्र जंतुओं को पानी की सतह पर आकर सांस लेने में सहायता करते हैं। जब जंतु पानी में नीचे चला जाता है तब नाक छिद्र बंद हो जाते हैं
जी।
जैसे व्हेल, डॉल्फिन
जी, जी।
कुछ मछलियों में तरण आशय स्विम ब्लैडर होते हैं, जिनमें हवा भी होती है, ये उनको तैरने में सहायता करेगी। मछलियों तथा जलीय अकशेरुकी जंतुओं जैसे झींगा में श्वसन के लिए गिल्स होते हैं। पौधों में स्थलीय अनुकूलन भी होते हैं, जो जमीन पे उगने वाले पौधे जो पानी में नहीं होते
जी जी।
स्थलीय पौधों के अंतर्गत जो एडेप्टेशन हैं या अनुकूलन हैं, वे हैं शुष्क और ना ही अधिक आर्द्र पर्यावरण के लिए अनुकूलित होते हैं। ये वाले पौधे जमीन पे सूखे में रहने के लिए ठीक से उनमें एडेप्टेशन रहते हैं,
एडेप्टेशन रहती है उसमें।
और रेगिस्तान के जो पौधे उसमें रेगिस्तान के हिसाब से अनुकूलन होते हैं कि जल का लॉस कम से कम हो। मांसल तने व पत्तियां जिसमें जल का भंडारण हो सके
जी,
जैसे कैक्टस में
जी। आप इसके शायद मरुद्भेदीय अनुकूलन की बात कर रहे हैं
जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही, रेगिस्तान वाले पौधे। अब मांसल यानी सक्यूलेंट नर्व व मांसल जल भंडारक रचनाएं पत्तियों या तो कम होती है या नहीं होती, जिससे वाष्पीकरण द्वारा जल की हानि को कम किया जा सकता है या रोका जा सकता
जी,
है
बिल्कुल बिल्कुल,
क्योंकि वहाँ रेगिस्तान में पानी की कमी है
जी।
अनेक मरुस्थलीय पौधों व झाड़ियों में शत्रुओं से रक्षा के लिए कांटे भी होते हैं। जो पत्तियां हैं वो कांटे के रूप में होती हैं, जिसमें कि पानी कम उड़े और वो कांटे शत्रुओं से भी रक्षा कर लेते हैं।
और मैंने एक बात और देखी कि जिस तरह के मरुद भेदीय अनुकूलन की बात आप कर रही हैं पौधों के, मैंने ये देख रहा हूँ कि जिन भी पौधों को इस तरह की स्थिति में रहना पड़ता है वो देख रहे हैं कि उनमें कांटे भी होते हैं और वो ऐसी परिस्थिति में कम से कम पानी में उसको रह लेते। अच्छा, जैसा मैं जिक्र करना चाहूंगा एलोवेरा आप एलोवेरा के बारे में आप देख रहे होंगे,
बहुत सुना है।
कितना खूबसूरत आजकल, मतलब इतना स्किन और सभी तरह के लिए वो फायदेमंद, तो उसमें भी मैं ये देखता हूँ कि कांटे होते हैं छोटे छोटे जी, लेकिन वो उतना नुकसानदेह नहीं होते जितना कैक्टस होता है।
खाली वाटर कंजर्वेशन का एक तरीका
जी 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 जी।
और स्टोमेटा भी कम संख्या में होते हैं जिसमें जलहानि कम हो
जी,
और विकसित मूल तंत्र जिससे कि नीचे से नीचे जाके पानी ला सके
जी जी जी
पौधे के लिए। तो ये तो हो गया कुछ अनुकूलन
जी।
अब वहाँ पे जो प्राणी रहते हैं जानवर, उनमें क्या अनुकूलन है जो रेगिस्तान में या
जी जी जी, जी।
वहाँ पे रहते हैं सूखे में, अधिकांश रेगिस्तानी जंतु दिन में धूप में आने से बचते हैं
जी।
अनेक मरुस्थलीय स्तनधारी यानी मैमल्स, सरीसृप तथा उभयचर रेगिस्तान के उच्च ताप से बचने के लिए बिलों में रहते हैं।
बिलों में रहते
ये रात में बाहर आते हैं जब तापमान कम हो जाता है। लगातार अधिक तापमान की दशा में रहने वाले मरुस्थलीय प्राणियों को अपने शरीर का तापमान एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना आवश्यक है। इसलिए कुछ के शरीर में लंबे अंग होते हैं जिससे शरीर का क्षेत्रफल बढ़ जाए और ऊष्मा उत्सर्जित
हो जाए
जी। शुष्क न रोधी
शरीर। नहीं, मैंने ये भी सुना है अरुण मोहन जी,
हाँ।
कि ऊंट जो है एक बारी में कई दिनों तक का पानी पी लेता है जी,
उसमें जो कुबड़ है
अच्छा अच्छा
वो उसको सहायता करता है
अच्छा।
उसमें वो पानी भंडारण कर सकता है। ऊंट एक दिन में काफी अधिक मात्रा में पानी पी सकता है
जी जी,
या काफी लंबे समय तक बिना पानी के लिए जिंदा रह सकता है
जी।
इसे तो ऊंट को हम रेगिस्तान की सवारी में
रेगिस्तान
इस्तेमाल करते हैं
जी जी।
यह जल के अभाव में शरीर से जल की हानि रोकने के लिए सांद्र मूत्र यानी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का उत्सर्जन भी कर सकता है।
अच्छा, अच्छा।
यानी इसने अपने आप को रेगिस्तान के हिसाब से बड़ा अच्छा सा डेवलप किया है
जी।
सरीसृप जैसे मरुस्थलीय प्राणी जल की हानि घटाने के लिए मूत्र को यूरिक एसिड के अन घुलनशील रूप में उत्सर्जित करते हैं, यानी एसिड पानी बिल्कुल नहीं उसमें, इससे जल की हानि बहुत कम होती है। अब अति शीत तथा जलाभाव में जीवित रहने के लिए भी एक एडेप्टेशन की जरूरत है, अनुकूलन की आवश्यकता है। तो आप ये देखिए, एडेप्टेशन हमको हर समय करना होता है अगर हम जीवित रहना चाहते हैं, और इसमें मनुष्य सबसे कम एडेप्टेशन करता है इसीलिए परेशान रहता है। अत्यंत शीत जलवायु में रहने वाले प्राणियों के शरीर पर मोटा फर होता है
जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल।
हवा को अवरोधित कर शीत प्रतिरोधक का कार्य करता है, शरीर को गर्म बनाए रखता है। इनकी त्वचा के नीचे भी वसा की परत होती है
जी,
जो अतिरिक्त अवरोध प्रदान
तो
करती
आप
है।
इसमें क्या ध्रुवीय भालू जो होते हैं, जो पोलर बियर, वो आते हैं क्या इसमें?
जी बिल्कुल आएंगे
जी जी।
उनका
अच्छा,
तो इसलिए बहुत फर है उनके पास
जी जी जी। इसका मतलब
जी ठंडी जलवायु वाले,
लेकिन मैंने पेंगुइन भी मेरे ख्याल से अति शीत में रहने वाले होते हैं,
पोलर रीजन में मिलती है,
लेकिन उन पे फर तो नहीं होता, मतलब
फैट होता है।
अच्छा, फैट होता है।
अच्छा, इनकी त्वचा के नीचे भी वसा की परत होती है जो अतिरिक्त अवरोध प्रदान करती है
जी, और देखने में बहुत सुंदर
लगते
हैं जी जी।
ठंडी जलवायु वाले अनेक स्तनधारी यानी मैमल्स के शरीर का आकार एवं माप उस जलवायु के अनुकूल होता है। वे गोलाकार एवं भारी शरीर, छोटी टांगे, कानों व पूंछ वाले होते हैं।
हाँ, बिल्कुल ठीक है, पेंगुइन के बारे में आप कह रहे हैं, बिल्कुल।
ये अनुकूलन ऊष्मा को बचा कर रखने में सहायक होता है। पेंगुइन में घने पिच की मोटी परत होती है
जी,
जो ऊष्मा की हानि को रोकती है। इसके फ्लिपर व टांगे भी ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए अनुकूलित होती हैं। जीवों में वायवीय अनुकूलन भी होते हैं, जो हवा में रहते हैं। तो वायवीय जीवों के अंतर्गत वे थोड़े से जीव आते हैं जो हवा में उड़ सकते हैं। ये जीव वृक्षों, जल या थल पर सुरक्षा व आश्रय के लिए आते हैं। इन्हें आर्बोरियल यानी पेड़ पर रहने वाले जीव कह सकते हैं। ये जमीन पर चल या दौड़ सकते हैं, या वृक्ष अथवा धरती पर आने के लिए हवा में छोटी सी उड़ान ले सकते हैं। उड़ने वाली गिलहरी, उड़ने वाली छिपकली, पेड़ पर रहने वाले मेढक, लंगूर तथा बंदर इस वर्ग में आते हैं। वास्तविक वायवीय जीव चिड़िया तथा चमगादड़ है। ये जीव हवा में रहने, मंडराने व उड़ने के लिए शरीर में संतुलन हेतु अनुकूलित होते हैं, और उन अनुकूलन को भी हम बताई दें। वायु में से गुजरने के लिए सहायक धारा रेखित शरीर, स्ट्रीमलाइन बॉडी, पंख भी होते हैं। अग्रपाद जो आगे के हाथ है वो पंख में बदल गए हैं, पंखों में रूपांतरित होते हैं, जो उड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। पक्षियों के पंख जो पीछे की तरफ ढके रहते हैं और जो हवा को रोककर शरीर को नर्म तथा गर्म बनाए रखते हैं तथा उन्हें उड़ने में भी सहायता करते हैं। चमगादड़ के अग्रपाद की उंगलियों के बीच त्वचा का फैलाव होता है जो उन्हें उड़ने में सहायता प्रदान करता है। डियर लर्नर्स, आपको मालूम है कि चमगादड़ जो है वो फ्लाइंग मैमल है
जी।
उसका जो हाथ है वो पंखों में तो नहीं बदले हैं, उसके बीच में एक त्वचा की लेयर आ गई है जिससे उड़ने में सहायता मिलती है। हड्डियां इनकी हल्की होनी चाहिए उड़ने वाले जीवों की,
बिल्कुल बिल्कुल।
तो शरीर को हल्का रखने के लिए हड्डियां खोखली होती हैं, जो मांसपेशियां जो लगी हुई हैं पंखों के साथ या इस तरह के स्ट्रक्चर्स के साथ जोड़ने में सहायता कर रहे हैं। शरीर को पंख से जोड़ने वाली पेशियां बहुत शक्तिशाली होती हैं, जिससे कि वो उड़ने में शक्ति बहुत चाहिए तो वो शक्ति वो मांसपेशियों से ही प्राप्त होगी। निष्कांत साहब, आप हमें ये बताएं कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है और इस पॉइंट पर आप थोड़ा रोशनी
दें। देखिए, आपने बिल्कुल, जो अभी हम काफी समय से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं प्राकृतिक, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से शिक्षार्थियों को, हमारे लर्नर्स को इसके सभी घटकों के बारे में आपने बताया, उनके कारकों के बारे में बताया, खाद्य श्रृंखला के बारे में बताया, आपने ऊर्जा जो प्रवाह जो होती है उसके बारे में भी आपने बताया। बिल्कुल, आपने जो प्राकृतिक पर्यावरण पे इसके आगे जाना मतलब लगभग एक वो हो जाएगा। तो आपने, मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि ये जो प्राकृतिक पर्यावरण जो है
जी,
इसमें मतलब किसी भी प्राणी का अगर ज्यादा बढ़ जाना या
हो जाए,
या मतलब जैसे हमारे जो शिक्षार्थी हैं वो अपने सब्जेक्ट में पढ़ रहे होंगे, इसी लेसन में पढ़ रहे होंगे जनसंख्या वृद्धि के पर, समावष्टि वृद्धि पर, तो क्या प्राकृतिक पर्यावरण किसी भी प्रकार से मतलब जनसंख्या इसके नुकसान, जनसंख्या किसी भी प्राणी की जनसंख्या वृद्धि क्या नुकसानदेह हो सकती है क्या इसका?
देखिए, जनसंख्या वृद्धि से ये होता है कि हमारी जो आवश्यकता है वो बढ़ जाती है
जी,
और वो सारी आवश्यकताएं तो हम प्रकृति से ही पूरी करेंगे
जी,
तो प्रकृति की कैरिंग कैपेसिटी को हम क्रॉस करते हैं
जी,
तो ये तो एक नुकसान होता है कि हमें चीजें कम मिलेंगी
जी।
दूसरा, अगर हम गंदगी फैला रहे हैं तो उससे पोल्यूशन होगा
जी,
और उससे जो चीज हमें प्राप्त हो सकती थी वो भी प्राप्त नहीं होगी
जी।
अब जैसे आज प्राकृतिक पर्यावरण में प्रदूषण बहुत हो गया है, अब हम किस तरह सोचें कि उसकी रोकथाम हम एक आम आदमी किस प्रकार कर सकता है?
जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत जहनी बात आपने करी है। आपने एक वक्त जैसे हम पीड़ित हैं, जिसे कह सकते हैं कि आज इतने समय बाद हम लोग जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन डिप्लीशन है और एसिड रेन जैसी जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, उनको इनके प्रति हमें गंभीरता से देखना होगा। और हमें, क्योंकि देखिए, जब आप इस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे प्राकृतिक पर्यावरण के, तो इतना सुंदर सा आपने माहौल हमारे शिक्षार्थियों के लिए बना दिया था कि हमें ऐसा लग रहा था कि हम कितने सुंदर माहौल में रह रहे हैं
जी।
तो लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी है, जो आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो भी हमें देखना होगा कि आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन और जैसे
उस सबके जिम्मेदार हम ही हैं
जी 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 जी।
तो जो हमें सही करना है खुद को करना है
जी जी। नहीं, मैं अरुणा जी, मैं एक और बात आपसे पूछना भी चाहूंगा, आपसे सलाह भी चाहूंगा, हम चाहेंगे कि हमारे शिक्षार्थी भी इससे लाभान्वित हों। मैं ये जानना चाहूंगा कि देखिए, जैसे मैं अभी बीच में जिक्र भी किया था कि उत्तराखंड में जो अभी जो आप पर्यावरण इस समस्या चल रही है, जो अभी जो बाढ़ रूपी आपदा जो आई हुई है, तो इसमें मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या हम भविष्य के लिए कुछ इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो तो कुछ ऐसा हम क्या कर सकते हैं? मतलब
जैसा कि हैदराबाद वगैरह में बना हुआ है, ये पूरी कैनाल बनाई गई है
जी जी,
जब पानी कहीं ज्यादा होगा तो उस कैनाल में एक से दूसरी, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी पूरी सिटी कैनाल से घिरी हुई है
जी,
तो पानी उसमें भरता चला जाएगा। तो अगर ये वाटर हार्वेस्टिंग का हम एक तरीका निकाल लें कि पानी जब शहर में आएगा तो ढलान किस तरफ है, वहाँ पे हम एक कंजर्वेशन का पॉइंट बनाए या टैंक बनाए कि पानी वहाँ इकट्ठा होता जाएगा, उसके लिए थोड़ा ही सा इंतजाम करना होता है, ज्यादा नहीं लेकिन करना होता है। अगर वो नहीं है तो पानी फैलता जाएगा
जी,
तो अगर रोड से पानी भरेगा तो रोड टूटेगी।
नहीं, मैं आपको मतलब हैदराबाद की स्थिति आपको थोड़ी विभिन्न नजर आनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ, ये तो जो अभी जो उत्तराखंड में जहाँ से नदियाँ अलकनंदा भागीरथी, ये तो उद्गम स्थल से निकली हैं। तो यहाँ पे तो मैं आप नहीं,
जैसे अब हरिद्वार पे आ गई मान लीजिए
जी जी,
तो हरिद्वार में बना सकते हैं आप कुछ
जी 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 जी। जी,
और बनाया भी होगा
जी,
कुछ
ना
कुछ होगा। कभी कभी इतना आपदा इतनी बड़ी होती है कि सिस्टम पूरा काम नहीं कर पाता
जी। जैसे भी हम हमारे शिक्षार्थी भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि नदियों के किनारे मकान इस तरह से भर भरा के गिर रहे थे
जी।
तो उसमें हम लोग कहाँ तक दोषी हैं, मतलब क्या हमारा उसमें कोई रोल है या नहीं है? मतलब
देखिए, मकान बनाते हैं पहले तो हरदम जमीन का एग्जामिनेशन होता है कि यहाँ पे मकान बन सकता है कि नहीं, कितने फ्लोर बन सकते हैं, बेसमेंट बन सकती है कि नहीं, मिट्टी यहाँ की कैसी है, अगर भूकंप आया तो क्या हो सकता है, बाढ़ आई तो क्या हो सकता है, इस सब का जायजा लेने के बाद ही मकान बनते हैं।
नहीं, मैं यहाँ एक बात आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगा अपने लर्नर्स का कि मेरे को ऐसा लगता है, या आप मेरे को सलाह दें इस पर कि कहीं ना कहीं हम अपने पर्यावरण के साथ उसमें छेड़छाड़ भी कर रहे हैं। हम बिल्कुल रिवर बेड जो है एक नदी के दोनों ओर इतना तो स्थान छोड़ा जाता है जिससे कि वहां पर अगर आपातकालीन स्थिति में नदी अपना अगर दायरा बढ़ाती है तो वो उसको झेल सकते हैं मतलब, लेकिन एकदम नदी के साथ मकान बनाना इस तरीके से तो
ऐसा है। निष्काम साहब
जी,
हम हमारे स्टूडेंट्स और हम टीचर
जी,
हम अपने लेवल पर इतना ही कर सकते हैं कि हर एक काम नियम के हिसाब से करो और
बिल्कुल मत करो। बिल्कुल
अब बाकी जो चीजें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश में दूसरे लोगों पर है
जी, बिल्कुल।
अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसके बारे में हमें बहुत शायद जानकारी ना हो, ऐसा भी हो सकता है
जी, जी।
अब वो अपना काम खुद करेंगे ऐसी हम आशा करते हैं।
चलिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल बढ़िया बात की आपने इसमें।
समस्त जीवधारी परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, अन्यथा एक समष्टि के भीतर रहना कठिन हो जाएगा
जी।
अब पहले तो हमें जाने समष्टि क्या है
जी।
समष्टि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में समान जीवधारियों का एक समूह है। प्राणियों की विभिन्न प्रजातियों की समष्टियां एक ही पायतंत्र में रहती हैं। जब प्राणियों का उनके पर्यावास में एक दूसरे से आमना सामना होता है तो दोनों को अनेक तरह से प्रभावित कर सकता है। कुछ मुठभेड़ या एक या दोनों के लिए हानिकारक हो सकती है तो अन्य लाभदायक भी हो सकती है। इस प्रकार के संबंधों को इनके बीच संवाद व परस्पर जुड़ाव के आधार पर अलग अलग प्रकारों में बांटा जा सकता है, यानी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स कितनी हो सकती हैं
जी।
सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं म्यूचुअलिज्म यानी सहजीविता। सहजीविता दो भिन्न स्पीशीज के बीच ऐसा पारस्परिक व्यवहार है जिसमें दोनों सदस्य लाभान्वित होते हैं। लाइकेन शैवाल व फंगस के सहचर्य द्वारा निर्मित ऐसी ही एक पूर्ण इकाई है। लाइकेन का मुख्य शरीर फंगस का बना होता है, शैवाल अपने तथा फंगस के लिए भोजन बनाता है और फंगस शैवाल को जल खनिज व आश्रय देता है। तो ये तो हुआ म्यूचुअलिज्म, एक दूसरे का फायदा हो रहा है। दूसरा रिलेशनशिप है कमेंसलिज्म, सहभोजिता। यह अंतर जातीय अलग स्पीशीज के बीच पारस्परिक संबंध है जिसमें एक स्पीशीज लाभान्वित होती है और दूसरी अप्रभावित रहती है। ना लाभ ना हानि, एक को फायदा दूसरे को कुछ भी नहीं, ना फायदा ना नुकसान। इसमें एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अभिगमन या आश्रय के लिए निर्भर हो सकता है। उदाहरण के लिए हर्मिट केकड़ा हर्मिट क्रैब अपने शरीर की रक्षा के लिए गैस्ट्रोपोड के आवरण के ऊपर रहता है। सकर फिश स्वयं को शार्क की निचली सतह पर चिपकाकर आराम से उसके साथ विचरण करती है। इस प्रकार यह अपने को परभक्षी से बचा लेती है और दूर तक चली जाती है। एक और रिलेशनशिप है जिसको हम कहते हैं पैरासिटिज्म, यानी परजीविता। इसके अंतर्गत एक प्राणी दूसरे के शरीर के भीतर या ऊपर रहता है और उससे पोषण प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया में वह अपने होस्ट यानी पोषक को हानि पहुंचाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य की आंत में रहने वाला फीता कृमी, टेपवर्म
के बारे में।
फिर एक है सहजीविता जिसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। यह भिन्न स्पीशीज के दो या अधिक जीवों का घनिष्ठ संबंध है जिसमें वे बहुत सामीप्य से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आप पुष्पों में परागण से भली भांति परिचित हैं, जिसमें पुष्पी पौधों में मधुमक्खी द्वारा पर परागण होता है और मधुमक्खी को पौधों से मकरंद यानी नेक्टर मिल जाता है। इस प्रकार परागित होने वाले पौधों में वायु द्वारा परागित होने वाले पौधों की तुलना में कम परागकण होते हैं। यह सहजीवन का एक अच्छा उदाहरण है। यह शब्द परजीविता, सहभोजिता व सहजीविता से संबंधित है। सिम्बायोसिस का शाब्दिक अर्थ है साथ रहना। हमारे लिए यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि यहाँ दो प्रकार के प्राणियों के बीच घनिष्ठ संबंध व पारस्परिक निर्भरता पर बल दिया जा रहा है। समष्टि एक स्पीशीज में रहने वाले जीवधारियों का समूह है
जी।
किसी भी प्रजाति की जनसंख्या अपरिवर्तित या स्थिर नहीं रहती, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। प्रश्न पैदा होता है कि जनसंख्या बदलती रहती है, क्यों बदलती रहती है? इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास हमें करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि किसी समय पर एक समष्टि में किसी स्पीशीज की जीवधारियों यानी सदस्यों की संख्या में परिवर्तन है। समष्टि का आकार, घनत्व, उत्पत्ति यानी जन्म दर, मृत्यु, मरण दर, जनसंख्या वितरण, आयु विभाजन तथा पर्यावरणीय प्रतिरोध पर निर्भर करता है, जिसका किसी समष्टि को सामना करना पड़ सकता है। यह हमने जानकारी दी परस्पर संबंधों की। हमें ये भी जान लेना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि क्यों होती है और कैसे होती है। जनसंख्या वृद्धि भी हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है।
जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा।